श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय क्रमांक 21 से अध्याय का शीर्षक है गोपियों के द्वारा गोवर्धन का गुणगान। श्लोक क्रमांक 18। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्य पानीय सूयव सकंदर कंदमूले हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्य पानीय सूयव सकंदर कंदमूलैः हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्य पानीय सूयव सकंदर कंदमूले हंत ओ अयम यह अद्रि पर्वत अबला हे सखियों हरिदास वर्य भगवान के सेवकों में से सर्वश्रेष्ठ यत क्योंकि राम कृष्ण चरण कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों के स्पर्श स्पर्श से प्रमोद हर्षित मानम आदर तनोति प्रदान करता है सह साथ गो गणयो गौवे बछड़े तथा ग्वालबाल के तयो उन दोनों श्री कृष्ण तथा बलराम को क्योंकि पानीय पेय जल के साथ सुयवस अत्यंत मुलायम घास कंदर गुफाएं कंदमूलय तथा खाद्य कंदों से। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। यह गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। सखियों यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गौओं बछड़ों तथा ग्वाल बालों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं पीने का पानी अति मुलायम घास गुफाएं फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तात्पर्य उपर्युक्त उद्धरण श्रील प्रभुपाद कृत चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से लिया गया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है। पानीय शब्द गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुख धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद आम का रस तथा पीलू का रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है। सूयवसह दूर्वा अर्थात दूब घास को बतलाता है, जिससे अर्घ्य की धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है जो सुगंधित मुलायम तथा गौओं की वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह यह घास आध्यात्मिक पशुओं को खिलाने के काम आती है। कंदर गुफाओं का सूचक है जहां कृष्ण बलराम तथा उनके संगी खेलते बैठते और लेटते थे। ये गुफाएं तब आनंद देती जब या तो बहुत गर्मी हो या सर्दी हो या फिर वर्षा हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम कंद, शरीर सजाने के रत्न, बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर, चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाखया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधुर्जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। सब भक्तों से अनुरोध है अपने मोबाइल फोन को बंद करके रखें ताकि लेक्चर में बाधा उत्पन्न न हो।
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। हम दूसरी शिक्षा पर हैं। गोवर्धन पर्वत की महिमा दर्शाने हेतु भगवान ने ये गोवर्धन लीला की और गोवर्धन पर्वत की महिमा अपरंपार है। यहाँ तक कि ये जो श्लोक इतने हफ्तों से हम ले रहे हैं स्वयं साक्षात गोपियों द्वारा कहा गया ये श्लोक। हंताय मद्र रबला हरिदास वर्यो। तो ये जो लौल्यम गोवर्धन हमें सिखा रहे हैं, लौल्यम अर्थात उत्साह, एक तीव्र इच्छा भगवान को प्रसन्न करने की, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम पराम। इस संसार में यदि हमें कुछ हासिल करना है तो जब तक तीव्रता नहीं है हम इस संसार में भी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि एक भिखारी को बहुत तीव्र रहना पड़ता है तब जाकर जो कहते हैं फूटी कौड़ी मिलती है। तो यदि आध्यात्मिक संसार को प्राप्त करना है और पूर्ण पुरुषोत्तम उनको यदि प्रसन्न करना है तो कितनी तीव्रता की आवश्यकता पड़नी चाहिए। इसलिए यहां गोवर्धन अपने उदाहरण से हमें बता रहे हैं कि लौल्यम की परिभाषा क्या है, उत्साह या तीव्रता की परिभाषा क्या है। तो हम पिछले कुछ हफ्तों से गोवर्धन के अंदर ये जो 6C फॉर्मूला इसकी चर्चा प्रारंभ किए हैं, चॉइस चैलेंजेस कमिटमेंट कैरेक्टर क्लैरिटी और कंट्रीब्यूशन। और हमने इसका पेयरिंग कर रखा है, चॉइस इज पेयर्ड विथ चैलेंजेस, कमिटमेंट इज पेयर्ड विथ कैरेक्टर, क्लैरिटी इज पेयर्ड विथ कंट्रीब्यूशन। तो हमने कमिटमेंट और कैरेक्टर इस पर पिछले कुछ हफ्तों से चर्चा प्रारंभ की है और ये मुद्दा हमने लिया कि जहां कमिटमेंट समर्पण प्रतिबद्धता या वचनबद्धता जब ये बात आती है तो जो हमारा कैरेक्टर है वो परखा जाता है। और कृष्ण भक्ति में कुछ समय बीतने के पश्चात ये प्रश्न हमारे मन में हमारे जहन में ये प्रश्न उठता है, क्या मैंने सही निर्णय लिया या मैं फंस चुका हूं। अफ्रेड टू स्टे अफ्रेड टू लीव, शुड आई स्टे शुड आई लीव। तो पिछले हफ्ते हमने इस मुद्दे को लेते हुए बिकमिंग कृष्ण कॉन्शियस इज लाइक एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप विथ कृष्णा। और श्री वैष्णव संप्रदाय के ये आलवार हुए नम अलवार जिन्होंने ये उदाहरण दिया कि हम जो प्रकृति हैं भगवान जो परम पुरुष हैं उनसे संबंध जो स्थापित करना चाहते हैं, जैसे कि एक स्त्री पुरुष के साथ विवाह के संबंध में बंधती है, तो उसी प्रकार से हमारा संबंध हम प्रकृति भगवान से बंधना चाहते हैं। उदाहरण हमने लिया था कि यदि ये विवाह का संबंध स्थापित करना है तो फिर जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो क्या हो गए आज की भाषा में शादी.com। स्पिरिचुअल इनिशिएशन सेरेमनी इज लाइक द मैरिज सेरेमनी, देयर इज यज्ञ प्रीस्ट टू पार्टीज एंड वाउज, ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो टेक प्लेस इन इनिशिएशन सेरेमनी। परंतु हम फिर ये महत्वपूर्ण प्रश्न पर थोड़े अटक गए थे कि हमने तो भगवान को चुन लिया, क्या भगवान ने हमको चुना है, क्या हम भगवान के लायक हैं या ये स्थिति है हमारी। तो ये श्री वैष्णव आचार्य ये 8 कारण दिए कि चुनने के पश्चात विवाह होने के पश्चात जब पत्नी तलाक देने का सोचती है पति को या सोचती है कि ये पति मेरे लायक नहीं है, तो ये 8 कारण वो देते हैं। हम इसकी चर्चा प्रारंभ किए थे, एक एक कर हम इसे लेंगे। आज प्रयास करेंगे एक हाथ और लेने का। एक्सपेक्ट्स मी टू बी ग्रेटफुल, ही हैज वियर्ड फॉर्म्स एट टाइम्स, फेवर्स माई को वाइव्स मोर, आफ्टर ऑल आई चोज हिम। तो हमने जो पहला कारण उस पर चर्चा कर ली है, अब ये दूसरा कारण। आज दूसरा कारण हम लोग देते हैं, या पत्नी तलाक क्या दे रही है, माई हजबेंड डजंट स्टे विथ मी ऑल द टाइम। इन अदर वर्ड्स, कृष्णा डजंट स्टे विथ मी ऑल द टाइम। क्या अर्थ होता है इसका? अक्सर जब ये शिकायत एक पत्नी करती है पति के संदर्भ में कि ये जो है व्यक्ति, ये पुरुष, ये मुझे समय नहीं देता या मेरे साथ नहीं रहता, तो क्या ये बात भगवान कृष्ण के लिए सच है? हां, हम लोग इस भौतिक संसार में फेंके गए हैं एक प्रकार से, और हम जब भगवान के विषय में सुनते हैं तो यही सुनते हैं कि वो गोलोक वृंदावन में अपनी लीलाओं में निमग्न है, और यहां तक भी सुनते हैं कि वो अलग अलग अवतार लेकर अलग अलग कल्प में ब्रह्मांडों में लीलाएं कर रहे हैं। मंदिर में भी आते हैं तो देखते हैं ऑल्टर में उनकी पार्टियां चल रही हैं। मेरा क्या, मेरी ओर कब देखोगे? हम लोग एक हाल ही में एक कार्यक्रम के लिए गए थे, हमारे ब्रजमोहन प्रिया प्रभु, उनका एक स्किन क्लिनिक उन्होंने खोला है, तो वो कार्यक्रम में उन्होंने, उनके कोई जान पहचान के व्यक्ति आए तो वो एक भजन गा रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग भजन गा रहे थे। भगवान एक बार चले आओ, आकर चले जाना। हाँ, ऐसा ही भजन था, एक बार तो चले आओ, चाहे आकर चले जाना, परंतु मेरी भक्ति ऐसी होगी कि मेरी भक्ति को देखकर जाओगे नहीं। मैं खाली बोल रहा हूं, उन्होंने गाया था तो मैं अपने तरीके से उसको सुना। तो कई बार हम भी भगवान को इस प्रकार की याचना करते हैं, भगवान एक बार तो बांसुरी थोड़ा साइड में रखकर मेरी तरफ देखो, बाद में फिर बांसुरी उठा लेना। पुजारी बांसुरी निकालते हैं, वो आपको जब भोग चढ़ता है तब उसमें भी आप बिजी रहते हो। तो ये प्रश्न कि क्या भगवान हर समय हमारे साथ रहते हैं, उत्तर ये है। हाँ, उत्तर उपनिषद दिए हैं उदाहरण दर्शाते हुए, उपनिषद ये उत्तर दिए हैं इस प्रश्न का। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, कि एक वृक्ष है, वृक्ष की डाली, और उस वृक्ष की डाली पर ये दो पक्षी, समाने वृक्षो पुरुषो निमग्नो, एक पक्षी है परमात्मा हमारे हृदय के अंदर, और दूसरा पक्षी कौन है, हम आत्मा। यहां पर ये जो उदाहरण दिया गया है कि दो पक्षी हैं, जैसे यहां पर इस चित्र में आप देखो, आपको दिख रहा होगा कि एक पक्षी दूसरे पक्षी की ओर बहुत उत्सुकता से देख रहा है और दूसरा पक्षी क्या कर लिया है, उसने मुंह फेर लिया है, विमुख, उसको कहते हैं विमुख। समाने वृक्षो पुरुषो निमग्नो अनिशया, इस उपनिषदिक श्लोक में ये जो शब्द है अनिशया, ईशया का अर्थ है भगवान की ओर उन्मुख होना, अनिशया का अर्थ है भगवान से विमुख होना। बहुत मेरे को ये अप्रोप्रिएट इमेज मिल गया, जहां पर लग रहा है कि वो दूसरा पक्षी रूठा हुआ है। तो हम लोग भगवान के इतने निकट हैं, परंतु ये प्रश्न क्यों उठता है हमारे अंदर कि भगवान क्या हमारे साथ हैं हर समय? भगवान तो हैं हमारे साथ, परंतु हम विमुख हो चुके हैं। इसलिए और विमुख होकर कर क्या रहे हैं, केवल ये नहीं कि भगवान से रूठे हुए हैं या भगवान से क्रुद्ध हैं, नहीं, उस वृक्ष के, ये वृक्ष की तुलना इस संसार से की गई है, तो ये संसार रूपी वृक्ष के जो फल हैं, उन फलों को चखने में इतने निमग्न हैं, इसलिए वो शब्द इस्तेमाल किया इस श्लोक में, निमग्नो, निमग्न हैं। जैसे मान लो हम किसी के बगल में बैठे हैं और हम निमग्न हैं किसी कार्य में, कोई सेलफोन में निमग्न है, आप बस में बैठे हो या ट्रेन में बैठे हो, प्लेन में बैठे हो या क्लास में बैठे हो, निमग्न हो आप सेलफोन में, बगल में कौन बैठा है, सामने कौन बैठा है, लेक्चर क्या चल रहा है, निमग्न है। तो वैसे ही ये जो जीव है, ये परमात्मा के इतने निकट होने के बावजूद अनभिज्ञ है, परमात्मा के वहां की मौजूदगी, परमात्मा की मौजूदगी से अनभिज्ञ है। क्यों? क्योंकि निमग्न है। किस में निमग्न है? फल खाने में, उसी वृक्ष के फल खाने में। और वो वृक्ष किस प्रकार के फल उपलब्ध कराकर देता है इस जीव को? कई फल शुरुआत में मीठे प्रदान करता है, मीठे फल। तो जब वो पहला फल खाता है, चौंच मारता है, मीठा फल निकलता है, तो और निमग्न होता है। तो ऐसे ही माया देवी क्या करती है, जब शुरुआत के फल देती है तो शुरुआत के फल मीठे फल होते हैं, है ना। सैंपल पीस हर समय मीठा होता है। आप कलिंगड़ खरीदने जाओ, वो जो कलिंगड़ आपको काट के एक पीस निकाल कर देगा, हर समय लाल निकलता है वो, हर समय मीठा निकलता है। वृंदावन में एक बार मैं फल खरीदने गया, तो गर्मी का ही मौसम था, तो कलिंगड़, एक व्यक्ति कलिंगड़ बेच रहा था, तो मैंने पूछा कि कैसे पता कि ये मीठा है, आप बताओ कैसे पता है आपको मीठा। तो उसने तुरंत उसमें से वो एक ट्रायंगल काटा, त्रिकोण काटा और देखो देखो कितना लाल है। तो मैंने कहा लाल होने से क्या, बोला खा के देखो। तो मैंने कहा कि इसको तो भोग नहीं चढ़ा है। अरे साहब, खाओ, जाते जाते परमात्मा को भोग चढ़ते जाएगा। ये बात वृंदावन के ब्रजवासी बोल सकते हैं। अभी इसको आप वेद वाक्य मत मान लेना कि साई कृपा वड़ा पाव सेंटर पे चले गए, परमात्मा को वड़ा पाव भोग चढ़ते हुए जाएगा। तो जो पहले शुरुआत के फल हैं, वो फल मीठे, परंतु उसके पश्चात फलों के अंदर मिलावट शुरू हो जाती है। किस प्रकार की मिलावट? वो भी मिलावटी होता है पहला बीजो, कि फिर मीठा थोड़ा कम, अब कड़वा नहीं आया अभी तक, मीठा कम होता है ना। कई बार हम ऐसे फल, एक आप लो अंगूर इतना मीठा निकला, या एक संतरा लो इतना मीठा निकला, फिर दूसरी कली उसको ही लो, अरे मीठा नहीं है अब। लेकिन आशा है, क्योंकि इसके पहले वाला मीठा था। आशा बंद, आशा से बंध गए, फिर एक और, फिर समझ में आता, फिर वो थोड़ा सा मीठा निकलता है वापस, फिर अचानक एक ऐसा निकलता है पूरा कड़वा, बेस्वाद हो गया, ये क्या हुआ। लेकिन फिर ये पक्षी दूसरी टहनियों पर देखता है, बाकी पक्षी लगे हुए निमग्न हैं वो, और वो लोग अपने अपने मीठे फल खाकर इसको दिखा रहे हैं, तेरा कड़वा निकला, तू ठीक से नहीं खा रहा, तू ठीक से चोंच नहीं मार रहा, तू ठीक से सही फल को नहीं चुन रहा इस वृक्ष के। तो भौतिकतावादी लोग कर क्या रहे हैं, सभी अपनी अपनी टहनियों के ऊपर टंगे हुए, अपने अपने फलों को लिए हुए, एक दूसरे को दिखाते हुए, एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हुए, कि चाहे फल मीठा निकले, चाहे कम मीठा निकले, चाहे कड़वा निकले, चोंच मारते रहो, चोंच मारते रहो। और दूसरा पक्षी जो है, ये दूसरा पक्षी इस प्रतीक्षा में है कि कब हम ये जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है इतने जन्मों से, इस कार्यक्रम को विराम दें। इसलिए जब श्रील प्रभुपाद को पूछा, शुरुआत के दिनों में प्रभुपाद के शिष्य जो भी उनके मन में आता पूछ लेते प्रभुपाद से, कि प्रभुपाद आप राधा माधव के समय क्या सोचते हो, प्रभुपाद आध्यात्मिक संसार में मच्छर हैं क्या, कुछ भी प्रश्न। तो ऐसे एक शिष्य ने प्रभुपाद को प्रश्न पूछा, प्रभुपाद क्या परमात्मा हमारे हृदय में, आपने कहा हमारे सबके हृदय में परमात्मा है, तो परमात्मा खड़े हैं बैठे हैं क्या पोजीशन में, मतलब प्रभुपाद ने कहा खड़े हैं, खड़े हैं, और चतुर्भुज रूप में खड़े हैं, और अपने चार भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए उन आयुधों के साथ खड़े हुए हैं, ये बता रहे हैं परमात्मा कि मैं कितना आतुर हूं। परमात्मा अपना लौल्यम बता रहे हैं, कि एक बार तो तुम इस तरफ मुख करके जो मैं फल देना चाहता हूं उसको चख कर देखो। समाने वृक्षो पुरुषो निमग्नो, निमग्नता हमारी भगवान कराना चाहते हैं, परंतु किसमें, जो उनके द्वारा दिए गया फल है उसमें। परंतु हमारी स्थिति ऐसी है कि दिन प्रतिदिन जन्म जन्मांतर से हम ऐसे परमात्मा की मौजूदगी को दुर्लक्ष कर रहे हैं। वो प्रसिद्ध कहानी है, एक राजा की चार पत्नियां थी, सुनी होगी हमने कहानी, चार पत्नियां, और चारों पत्नियों के साथ राजा अलग अलग प्रकार से व्यवहार करता। पहली पत्नी के साथ राजा इस पहली पत्नी को सारे ऐशो आराम प्रदान करता, अच्छा खाता पिलाता उसको, सारे ऐशो आराम, सेवा में लगा रहता पहली पत्नी के। दूसरी पत्नी उसने प्रदर्शनी के रूप में रख रखी थी, दिखाता दूसरों को, देखो इस पत्नी को देखो कितनी सुंदर है। तीसरी पत्नी के साथ गुफ्तगु व्हाट्सएप, उसके साथ गुफ्तगु में निमग्न रहता। चौथी पत्नी को न कभी पूछता, न कभी उसका ख्याल रखता, न उसकी ओर देखता। मृत्यु शैया पर लेटा ये राजा अब इस आशा में कि मेरे साथ कौन सी पत्नी जाएगी इस यात्रा के पश्चात, इस जीवन यात्रा के पश्चात मेरे साथ कौन सी पत्नी जाएगी। तो पहली पत्नी जिसको वो इतना खिलाता पिलाता, उसने कहा कि तुमने खिलाना पिलाना मुझे बंद किया, मैं तो तुम्हें उसी वक्त तलाक दे दूंगी। बहुत चक्का रह गया, यही सिला दिया तूने मेरे प्यार का। फिर दूसरी पत्नी जिसको वो प्रदर्शनी के रूप में दिखाता दूसरों को, उस दूसरी पत्नी ने कह दिया कि तुम्हारे मरते ही मैं किसी और से शादी करने वाली हूं, कार्ड बट चुके हैं, हॉल भी बुक हो गया है। और धक्का लगा इसे। तीसरी पत्नी जिसके साथ वो इतनी गुफ्तगु करता, उस पत्नी की ओर उसने देखा आशा भरी नजरों से, तो वो तीसरी पत्नी तरस खाते हुए कह दी कि स्मशान तक मैं चली आऊंगी तुम्हारे। बस तब उसने सोचा कि इनको मैंने जो इतना सब कुछ दिया, इनसे मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, तो चौथी पत्नी क्या देगी। तो उसने आशा ही नहीं रखी चौथी पत्नी स्वयं आई और कही कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी इस जन्म के पश्चात, जितने भी तुम्हारे जन्म होंगे मैं तुम्हारे साथ चलती रहूंगी। तब राजा आंखों में उसके आंसू आए। तो हम लोग वो राजा हैं, अभी हम लोग तरस खा रहे होंगे इस राजा के ऊपर, ये हमारी कहानी है बाय द वे, हम सब की कहानी है, हर एक जीव की कहानी है। हम लोग उस राजा की तरह चार पत्नियों के पति बने हुए। पहली पत्नी हमारा शरीर जिसको खिला रहे हैं पिला रहे हैं, और मरते समय ये शरीर कह देता है मुझे खिलाना पिलाना बंद, तुम्हारा मेरा संबंध खत्म, तलाक। दूसरी पत्नी जो धन ऐश्वर्य संपत्ति जो हम अर्जित करते हैं इस संसार में, इस जीवन में प्रदर्शनी के रूप में जो दिखाते हैं, देखो ये है मेरी संपत्ति, ये है मेरे शोहरत, तो वो पत्नी क्या बोल देती है कि भाई तुम जाते ही जायदाद तो साइन कर चुके हो, मतलब कार्ड बट चुके हैं, मेरी किसी और के साथ शादी निश्चित हो चुकी है। रिश्तेदार हैं तीसरी पत्नी जिनके साथ हम इतना समय बिताते हैं गुफ्तगु, वो कहते हैं कि चलो इतना समय इसने बिताया हमारे साथ तो कम से कम इसको छोड़ाते हैं। कहां छोड़ाते हैं, स्मशान तक छोड़ाते हैं, ताकि जस्ट टू मेक श्योर इट डजंट कम बैक। और चौथी पत्नी है परमात्मा, जिसको न कभी हमने पूछा, न कभी उनकी सेवा की, न उन्हें कोई महत्व दिया, और वो परमात्मा वो कहते हैं कि हां मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो ये एक और उदाहरण है कि एक समुद्र तट पर ये दो सेट फुटप्रिंट्स के दिखे। तो एक सेट फुटप्रिंट जीवात्मा और दूसरे सेट फुटप्रिंट परमात्मा। तो जीवात्मा बहुत हर्षोल्लास से इस समुद्र के तट पर सैर कर रहा था और इसने देखा कि मेरे साथ साथ मेरे भगवान, उनके भी दो पदचिन्ह दिख रहे हैं मुझे, मेरे साथ साथ ये चल रहे हैं। परंतु जैसे ही धूप बढ़ी और समुद्र की लहरें और तेज होने लगी और विकट परिस्थिति अब इस जीवात्मा को प्रतीत होने लगी, तो इसने क्या देखा? इसने देखा कि जो भगवान के दो पद चिन्ह हैं वो गायब हो गए, एक ही सेट पद चिन्हों के, ओनली वन सेट ऑफ फुटप्रिंट्स दिस मैन कुड सी, एंड ही बिकेम टेरिबली एंग्री एंड अपसेट विद गॉड कि यही वफादारी है आपकी, कि जब मेरी परिस्थिति विकट आई, मेरे जीवन में जब ऐसी विपदाएं आई, उस समय अकेला छोड़ दिया मुझे। तो भगवान से जब आक्रोश में ये विवाद, ये प्रश्न पूछता है ये व्यक्ति, तो भगवान कहते हैं वो जो एक सेट फुटप्रिंट्स वो मेरे थे, क्योंकि उस समय मैंने तुझे अपने हाथों में उठा लिया, तू सोच रहा है वो तेरे हैं, तेरी विकट विकट परिस्थिति में मैंने तुझे उठाया। तो अब यहां पर क्या समझ में आ रहा है? दो चीजें। नॉट ओनली कृष्णा स्टेज विथ अस ऑल द टाइम, बट कृष्णा स्टेज विथ अस वेर एवर वी गो। अब देखो कि हम लोग, हमारी तुलना पत्नी से यहां पर की गई है, तो यदि पति कोई ऐसे जगह पर चला जाए जो हमारे रहने लायक न हो, तो हम अक्सर ऐसे जगहों में जाना पसंद नहीं करेंगे। हम प्रश्न पूछेंगे कि अरे ऐसी गंदी जगह पर क्यों जा रहे हो, ये कोई जाने की जगह है। परंतु भगवान हमारे साथ ऐसी ऐसी गंदगी में रहते हैं। राधानाथ महाराज अपने एक प्रवचन में इसका विश्लेषण कर रहे थे कि जब जीवात्मा मनुष्य शरीर को छोड़कर, अपने कर्मों की वजह से मनुष्य शरीर को छोड़कर जब उसका पतन होता है, पशुवत योनि में चला जाता है, जब वो कीड़े मकोड़े की योनि में चला जाता है, कोई छिपकली बन गया, कोई मगरमच्छ बन गया, यहां तक कि सुअर बन गया और गटर के अंदर अपना जीवन बिता रहा है, गंदे नाली गटर के अंदर जीवन बिता रहा है, परमात्मा उस समय ये नहीं कहते कि भाई तू पहले नहा धो ले, साफ सुथरा हो ले, थोड़ा पाउडर वाउडर लगा कर आ, फिर मैं आता हूं। नहीं, महाराज कह रहे थे कि उस सुअर की योनि में भी भगवान आत्मा के साथ इसी प्रकार से रहते हैं जैसे कि वो पक्षी इतने निकट, सबसे निकट यदि हमारे कोई है तो वो है भगवान। और उनकी आतुरता उतनी बनी रहती है। देखिए, अभी ये बताया गया है कि केवल मनुष्य योनि में हमें यह अवसर प्राप्त होता है कि हम भगवान की ओर उन्मुख होकर भगवत धाम या भगवत प्राप्ति कर सकें, परंतु जितनी भी योनियों में हम गुजरे हैं, 84 लाख योनियों में, उन सब योनियों में परमात्मा हमारे साथ, यहां तक कि बताया गया है कि हर एक जीव के लिए उनके प्राइवेट पर्सनल परमात्मा है। हम सब के लिए, हमारे लिए एक स्पेशल परमात्मा है। और ये परमात्मा का जो रूप है, ये केवल इस संसार में, आध्यात्मिक संसार में नहीं है परमात्मा। So which means Krishna has expanded in the form of Paramatma only in this material world to accompany us. हमारा ये जो complaint है, जो पत्नी का ये complaint है कि ये मेरे साथ नहीं रहता, मेरे साथ समय नहीं बिताता, बिल्कुल विपरीत हो रहा है। कि भगवान, ऐसा कोई भी क्षण नहीं जाता जब भगवान हमें छोड़ दे अकेला। और इतना होने के बावजूद फिर हम प्रश्न पूछते हैं, क्या वो हैं, क्या उनका अस्तित्व है? नास्तिक जो हैं वो क्या करते हैं, क्या उनका अस्तित्व है? हाल ही में ये एक उदाहरण मैं दे रहा था, एक इंटरेस्टिंग मुझे व्हाट्सएप मैसेज आया था, तो मेरे एक सेमिनार में मैं एक उदाहरण दे रहा था कि ये जो प्रश्न लोग पूछते हैं ना कि क्या पुनर्जन्म है, क्या भगवान का अस्तित्व है, इज देयर लाइफ आफ्टर डेथ, तो बहुत सुंदर उदाहरण से समझाया गया है कि एक गर्भवती स्त्री के गर्भ में जुड़वा बच्चे बढ़ रहे थे, सातवां महीना, आठवां महीना। अब आठवें महीने में ये जुड़वा बच्चे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं गर्भ के अंदर, तो एक दूसरे अपने भाई को कहता है कि बस कुछ ही समय पश्चात आजादी का अनुभव हमें होने वाला है, कुछ ही समय पश्चात आजादी का अनुभव हमें होने वाला है, इतने महीनों से हम जो इस अंधेरे में जी रहे हैं, हम जो इस खामोशी में जी रहे हैं, हम जो इस दुर्गंधित वातावरण में जी रहे हैं, कुछ ही समय पश्चात हमारी आजादी अब आने वाली है। तो दूसरा ये सुनकर कहता है, आजादी, स्वतंत्रता, क्या कह रहे हो तुम, किसने देखा, किसने देखा है? तो ये कहता है, अरे भाई हम अभी कुछ ही समय पश्चात हम बाहर आएंगे, ये जो बंधन है इस बंधन से हम बाहर आएंगे, हम अच्छी से खा सकेंगे। नहीं, कभी नहीं हो सकता, मुंह से खाना, वो जो गर्भ में शिशु होता है वो कैसे खाता है, नाल, जो नाल होती है वहां से उसको भोजन दिया जाता है। तो वो कहता है मुंह से खाना, मुझे विश्वास ही नहीं होता कि हम कभी मुंह से खा पाएंगे। इस अंधेरे से बाहर आना रोशनी में, मुझे विश्वास ही नहीं है कि रोशनी है कहीं पर। आजादी, बंधन से मुक्त होना, दुर्गंधित वातावरण से, इस खामोशी से, ये सबसे मुक्त होना मुझे विश्वास ही नहीं, क्योंकि मैंने न तो रोशनी देखी, न तो मैंने मुंह से खाते हुए का किसी का अनुभव किया है, न मैंने किसी को वहां बाहर से अंदर आकर मुझे बताकर विश्वास दिलाने को देखा है कि ये मुझने मुझे विश्वास दिलाया है कि बाहर भी एक जिंदगी है, एक जीवन है जहां पर तुम आजाद घूम सकते हो, क्योंकि मैंने ये सब कुछ नहीं देखा तो मुझे विश्वास नहीं। तो फिर ये भाई कहता है मुझे विश्वास है, क्योंकि मुझे अपनी मां के ऊपर विश्वास है। तो फाइनली ये कहता है, मां के ऊपर, कौन सी मां की बात कर रहे हो, तुमने देखा है तुम्हारी मां को, क्या तुमने तुम्हारी मां को देखा है? तो ये जवाब में कहता है, हां, हम दोनों की जो मां है हमारे चारों ओर है, हम दोनों एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, जी रहे हैं, हमको जिला कौन रहा है, आवर मदर इज ऑल अराउंड अस, शी इज द वन हु इज फीडिंग अस, She is the one who is maintaining us, and she is the one who is going to show us the light outside. Life outside. उसी प्रकार से हम लोग ये प्रश्न पूछते हैं, क्या भगवान मेरे साथ हैं? अरे भगवान के वजह से हम जो अंदर बाहर सांस ले पा रहे हैं, हम जो खा पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जो कुछ हम कर पा रहे हैं, और जो ढींगे हाँकते हैं, हमने ये किया वो किया, किसके बलबूते पर चल रहा है सब? इसलिए महाभारत में उदाहरण दिया गया है कि भगवान न केवल हमारे साथ रहते हैं, बल्कि भगवान अवतार ले लेकर हमारी रक्षा करने आते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इमेज, जिसके अंदर ये जो पलके हैं, पलकों के ऊपर चोट लगी हुई है, पलकों के ऊपर चोट लगी हुई है, क्योंकि जब भी आंखों के ऊपर प्रहार होता है तो पलकें जो हैं वो सबसे पहले बंद होकर चोट अपने ऊपर लेती है। जैसे महाभारत में ये एक योद्धा था भगदत्त, इस योद्धा को एक ऐसा वरदान मिला था कि अपनी गदा से ये किसके ऊपर भी प्रहार कर दे तो उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। दुर्योधन जानता था, इसलिए दुर्योधन ने भगदत्त को बचा कर रखा हुआ था कि अर्जुन के सामने इसको मैं खड़ा करूंगा। इसलिए भगदत्त को किसी और के ऊपर वो गदा इस्तेमाल करने नहीं देता दुर्योधन, क्योंकि जैसे भौतिक संसार का नियम है, हर एक वरदान के साथ कंडीशंस होते हैं, है ना? तो ऐसे ही इस वरदान के साथ कंडीशन ये था कि भगदत्त केवल एक दफे उस गदा को इस्तेमाल कर सकता है, एक दफे बस, उसके बाद में वन टाइम यूज है खाली, उसके बाद में कोई यूज नहीं। तो दुर्योधन जानता था, इसलिए दुर्योधन भगदत्त को बचा कर रखा हुआ था और कहा कि वो तुम्हारी गदा को केवल एक ही व्यक्ति के ऊपर इस्तेमाल करना अर्जुन। और फिर उसने योजना बनाई एक दिन भगदत्त को अर्जुन के सामने, अर्जुन नहीं जानता था, भगवान श्री कृष्ण जानते थे। तो अर्जुन पूरी तैयारी में भगदत्त से युद्ध करने के, अर्जुन को लगा ये तो कोई एक साधारण सा सैनिक है कौरव सेना का, इसको तो मैं ऐसे खत्म कर दूंगा। जैसे ही भगदत्त को भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो भगवान अर्जुन का रथ, जैसे कहते हैं टॉप गियर पर ले लिए, और इतनी फूर्ती से रथ को हांकने लगे कि अर्जुन, अब जो रथी होता है उसको यदि प्रहार करना है तो सारथी को कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है प्रहार करने के लिए, परंतु भगवान प्रहार वहार छोड़ो, भगवान फूर्ती से ऐसा घूमने लगे, भगदत्त वो कंफ्यूज, अर्जुन कंफ्यूज, भगदत्त गदा लेकर रुके तो मारो, अर्जुन भी भगवान रुको तो मारो, दोनों अर्जुन भी भगवान की ओर देख रहे हैं अचंभे से, ये भगदत्त भी भगवान की ओर अचंभे से देख रहा है कि ये अचानक हुआ क्या, ये क्या दौरा पड़ रहा है ये कृष्ण को। और भगवान अर्जुन की एक न सुने, फूर्ति से घुमाते रुकते, जैसे भगदत्त अपना तैयारी करता मारने फिर से घुमाते, इतनी तेजी से भगवान घुमा रहे थे, भगदत्त परेशान हो गया, भगदत्त का पारा चढ़ने लगा, और गुस्से में जब पूरा पारा ऊपर तक चढ़ गया था, भगवान जो अंतर्यामी हैं, दूसरे पक्षी, तो भगवान ने जब टेम्परेचर देख लिया कि भगदत्त अब पूरा उसका घड़ा भर गया, अब इतने क्रोध में है कि अब ये जो गदा है गुस्से के कारण मेरे ऊपर प्रहार करेगा, तब भगवान उसके सामने रथ को रोके और भगदत्त अपना आपा खो बैठा और उसने गदा का प्रहार पहले भगवान के ऊपर कर दिया। जैसे ही भगवान पर कर दिया तो भगवान को तो कुछ होना था नहीं, और प्रहार करने के पश्चात फिर भगदत्त सोचता है ये ले गई भैंस पानी में। तो देखिए ये एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग है जहां पर भगवान अपने शुद्ध भक्त की रक्षा करने के लिए अपने स्वयं के ऊपर वो प्रहार लिए और ये उदाहरण दिया है महाभारत में। जैसे कि आंखों की रक्षा करने के लिए जो पलकें हैं, यदि कोई एक सुई लेकर आए आंखों में चुभोने के लिए तो पलकें कहती हैं कि पहले मुझसे गुजरना होगा तुम्हें। तो इसलिए हमारे जीवन में जब यदि हम प्रामाणिकता से भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हमें निष्फिखर होना चाहिए कि भगवान जो हमारे सबसे निकट हैं, भगवान वो कभी दगा नहीं देंगे। हमने भगवान को दगा दे दिया, अब तक देते आ रहे हैं, परंतु भगवान हमें कभी दगा नहीं देंगे। इसलिए ये जो कारण है कि पत्नी तलाक इसलिए देना चाह रही है क्योंकि पति मेरे साथ नहीं रहता, यहां पर भगवान परमात्मा के रूप में, भगवान अलग अलग अवतारों के रूप में ये सिद्ध कर दिए कि अरे मुझसे ज्यादा निकट कौन हो सकता है तुम्हारे। मैं वो पत्नी हूं जिसको तुमने हर समय दुर्लक्ष किया, निग्लेक्ट, इग्नोर किया, और मैं हर एक योनि में, चाहे गंदी सी गंदी योनि में निमग्न तू रहा है अपने अलग अलग इंद्रिय भोग में, परंतु मैंने परित्याग कभी नहीं किया तुम्हारा। अब तीसरा कारण कि ठीक है, पहला कारण याद है आप लोगों को, पिछले हफ्ते हमने लिया था, क्या है पहला कारण? Yes, this husband of mine, he doesn't help me in my household chores. मेरे हृदय को साफ करने के लिए ये भगवान कार्यरत नहीं है, पहला कारण। दूसरा कारण, he doesn't stay with me all the time. Okay, he helps me in cleansing my heart. Convinced that he stays with me all the time. My third reason to divorce, he doesn't fulfill my personal desires. What are my desires? So Krishna doesn't fulfill what I want. He fulfills what he wants from me. है ना, हम शुरुआत में कई बार भक्ति में आते हैं, हमको लगता है कि भक्ति में आने के बाद जीवन सुधर जाएगा, पूरी बिगड़ी हुई हमारी जिंदगी उसकी मरम्मत कराने आते हैं भक्ति में, त्रस्त आत्मा, परेशान आत्मा, और आते हैं भक्ति में, और फिर हमको जब ऐश्वर्यशाली भगवान दिखते हैं कि भगवान का ऐश्वर्य 16,108 रानियों के साथ जिन्होंने विवाह किया और व्यक्तिगत रूप से अपने आप को विस्तारित किया और एक एक के लिए एक एक महल बनाया, तो यदि मैं भी एक प्रपोजल मेरा सामने रख दूं, हाँ, तो एक महल मेरे लिए भी तो होगा यहां नासिक में कि नहीं? एक बार एक बहुत ही सुंदर युवती एक बूढ़े व्यक्ति से विवाह करना ठानती है, एकदम बूढ़ा, तो उसकी एक सहेली उसको प्रश्न पूछती है कि क्या देखा इसके अंदर, क्या देखा इसके अंदर? तो उसने कहा दो कारण, दो गुण देखे इसके अंदर। पहला कारण, एक तो इसकी इनकम और दूसरे इसके दिन कम। एक तो इसकी इनकम, दूसरे इसके दिन कम। तो क्या हम भगवान से इसलिए विवाह करना चाहे कि भगवान लक्ष्मी के पति हैं, तो इसलिए थोड़ी कृपा लक्ष्मी देवी की हमें भी भगवान देते रहेंगे, बरसाते रहेंगे। परंतु होता क्या है कि भगवान जब देखते हैं कि ये व्यक्ति मेरा भजन करने में लगा हुआ है ना, हम लोग आते हैं वो जो 6 सर्कल्स उसकी चर्चा की थी, हु इज कृष्णा, आई लाइक कृष्णा, आई ट्रस्ट, आई फॉलो कृष्णा। तो जब हम भजन करने में लगते हैं, भगवान देखते हैं, हालांकि भजन करते समय बहुत सी हमारी इच्छाएं, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये पूरा हो जाए, ये लोन चुकता हो जाए, ये EMI भर जाए, सब कुछ हो जाए, भगवान जब ये देखते हैं कि ये माला करते समय ये सब क्या सोच रहा है। तो चैतन्य चरितामृत में एक सुंदर श्लोक है, कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मागे ए बड़ो मूर्ख। भगवान अपनी माला पर ये जप करते हैं, हम लोग क्या जप कर रहे हैं, ये देही वो देही, ऊपर से हरे कृष्णा चल रहा है, हाँ ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, हाउस बाय द सी, अ कार बाय दैट हाउस, एंड समवन इन द कार एंड ऑल्सो इन द हाउस। कृष्ण कहे तो हमारा हरे कृष्ण के साथ ये सब कुछ चल रहा है। हरे कृष्ण का मतलब कुछ और है, लेकिन हम लोग उसको अलग ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, कृष्ण कहे आमा भजे, मेरा तो भजन तो कर रहा है ये, आगे से सामने से हरे कृष्ण कर रहा है। कृष्ण कहे आमा भजे मांगे विषय सुख, परंतु मांग क्या रहा है ये अंदर से, क्योंकि परमात्मा अंदर से डायरेक्ट टेलीकास्ट कर बता रहे हैं, स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है कि ये अंदर से कुछ और चल रहा है, अंदर का कीर्तन कुछ और है। अमृत छाड़ी, हाथ में अमृत है, हरे कृष्ण महामंत्र है क्या, नामामृत, अमृत छाड़ी विषय विष मांगे, कि अमृत को छोड़कर विष मांग रहा है ये, जानिया सुनिया विष खाइनो, नरोत्तम दास ठाकुर कहे। परंतु भगवान वो कैसे पति हैं कि पत्नी यदि अपने पति से कुछ गलत भी मांगती है तो ये हमारे पति कौन, वैकुंठ पति, भगवान श्री कृष्ण ये कौन से पति हैं, ये कहते हैं आमी विज्ञ ए मूर्ख, मैं तो विज्ञ हूं ये मूर्ख होगा, परंतु मैं तो विज्ञ, मैं बुद्धिमान हूं, विषय के ने देबा, क्यों इसको मैं ये विषय या विष दूं, दोनों एक ही है विष और विषय, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाए बो, इसको मैं अपने चरणों का अमृत देकर इसके अंदर जितनी विषय वासना है वो सब मैं खत्म करूंगा। भगवान कहते हैं इसने एक बार मेरा नाम लिया है, इसने माला उठाकर कह दिया है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना चाहता हूं, इसने ये ऐलान किया है, परंतु फिर भी इसके मन में विषय वासना है, विष मांग रहा है, ये मूर्ख होगा, परंतु मैं मूर्ख नहीं, मैं इसे अपना स्वर चरणामृत देकर इसके अंदर जितनी विषय वासना है उसको मैं दूर करूंगा। तो भगवान होता है ना, जब तलाक के लिए दोनों साइन करने चाहिए तब तलाक होता है। तो हम यदि कृष्ण भक्ति में आने के बाद मेरी ये इच्छा पूरी नहीं, जो थी रही कसी वो भी ले ली, उल्टा पूरी तो की नहीं, जो थोड़ा बहुत था पकड़ के रखा था मैं उसे भी छीन लिया, हरिष्ये तद धनम शनै, श्लोक के द्वारा श्लोक भी बोल दिया उसका, तो हम लोग तलाक पेपर साइन कर, भगवान कहते हैं मैं नहीं करूंगा साइन। देखो एक तो हमारी औकात क्या है, हम तुच्छे साइन कर रहे हैं, मुझे तलाक चाहिए आपसे। और भगवान की कृपा देखो, भगवान वहां से कह रहे हैं कि चाहे तू साइन कर दे, चाहे वकील को बुला, चाहे तू जज को बुला, चाहे पूरी सरकार को बुला, स्वचरणामृत दिला विषय भुलाइबो। ये है भगवान। इसलिए तुकाराम महाराज अपने अभंग में भगवान को कहते हैं कृष्ण माउली। माउली मतलब माँ। माँ कभी अपने बच्चे का परित्याग नहीं करती, चाहे बच्चे वो अपने माँ बाप का तिरस्कार कर कर कितना भी परित्याग कर कर उनको दूर भगा दें, परंतु माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों को कभी बहिष्कृत नहीं कर सकते। तो यहां पर भगवान ये जो कारण है, हमें हमारी इच्छाओं को पूरा न कर कर उन इच्छाओं को शुद्ध करते हैं। जैसे कल हमने रामनवमी मनाई, तो इसमें उदाहरण हम सबसे पहले लेते हैं रावण का। और रावण का उदाहरण किस प्रकार से लेते हैं, हमारे अंदर किसको जलाना है हमको, रोज हरे कृष्ण महामंत्र जब हम करते हैं सुबह, साधना भक्ति जो हम कर रहे हैं, दशहरा मना रहे हैं, दशहरा क्या है, दशहरा है क्या, रावण को जलाना। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस नाम रूपी बाण से हम हमारे अंदर के रावण को जलाएं। तो अब देखिए रामायण में रावण का जो विवरण शुरू होता है रामायण में, तो सबसे पहले रावण को ब्राह्मण बताया गया है। रावण एक ब्राह्मण था जिसके अंदर राक्षसी नहीं असुरी गुण थे। अलग अलग प्रकार रामायण बताता है कि जैसे राक्षस होते हैं, असुर होते हैं, दानव होते हैं, दैत्य होते हैं, इन सब में अलग अलग थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं। असुर जो होते हैं वो दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, तो रावण दिखने में बहुत सुंदर था, परंतु उसके अंदर राक्षसी गुण आ गए थे। और रावण उसके अंदर ऐसा डिसिप्लिन था, उसको जो हासिल करना है उसके लिए, तो उसका गुणगान किया गया है उस दृष्टिकोण से। तो हम लोग भी यदि हम देखें तो बाहरी रूप से, हाँ हम जब पेश आते हैं समाज में तो हम अपने आप को कैसे पेश करते हैं, एकदम क्वालिफाइड सक्सेसफुल, जैसे रावण अपने आप को पेश करता था। परंतु क्योंकि जो डार्क साइड रावण का था, वो डार्क साइड रावण का हम सब का अंदर, हमारे अंदर होता है, एवरीवन हैज द डार्क साइड। तो रावण के अंदर जो उसका डार्क साइड, वो जब उसने उसका दुरुपयोग किया, तो उसने धीरे धीरे अपने पतन का रास्ता वो चिन्हने लगा। तो रावण ने 4 लोगों का अपराध किया, जिसके बाद उसका पतन प्रारंभ हुआ। तब तक रावण बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्ति था, मतलब इतना सक्सेसफुल था कि बड़े बड़े देवता ईर्ष्या करते थे रावण से। कुबेर को हराकर श्रीलंका, सोने की लंका रावण ने नहीं बनाई थी, उसका काम क्या था, उसने खाली तपस्या कर वरदान ले लिए थे ब्रह्मा जी से, और फिर वो जा के दूसरों की प्रॉपर्टी हड़पता था। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने जो किया, ब्रिटिशर्स क्या किए, यही किए, अलग अलग देशों में जाके उनकी प्रॉपर्टी हड़प हड़प के अपने ब्रिटिश म्यूजियम में लगाते गए। अपने भारत से कोहिनूर यहां से चुरा लिया, जाके वहां लगा दिया ब्रिटिश म्यूजियम में। हमने यहां है क्या ब्रिटिश म्यूजियम में, सब चोरी का माल। कॉमनवेल्थ कंट्रीज क्या है, सब उनके ऊपर जाकर चोरी कर करके ब्रिटिश म्यूजियम में लगा दिया। तो रावण के म्यूजियम में भी यही होता था, एक तो पूरा कुबेर को हटाकर पूरी लंका छीन ली उसने। तो अगर रावण का रेज्यूमे देखें तो सबसे पहले वेदवती, ये हम कथा सुने हैं कि वेदवती रावण एक दिन, मतलब अब इतना शक्तिशाली हो गया कि विचरण करते रहता, उसके अंदर का जो डार्क साइड था, जब अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है तब समझ में आता है व्यक्ति का चरित्र कैसा है। तो रावण को अब अपॉर्चुनिटी, शक्ति इतनी प्राप्त हो गई, तो एक बार ऐसे विचरण करते हुए उसने देखा कि एक ऐसा पर्वत जहां पर एक बहुत ही अलग प्रकार की महक, सुगंध और गर्माहट जो बहुत सुहानी लग रही थी उसे, और ये वेदवती यहां पर तपस्या कर रही थी, विष्णु पर ध्यान कर रही थी। तो तुरंत वेदवती को देखता है रावण। वेदवती को देखकर रावण इतना ज्यादा मोहित हो जाता है कि ये उसकी प्रवृत्ति की, जैसे ही वो किसी सुंदर स्त्री को देखता, ये मेरी होनी चाहिए। तो प्रपोज करता है। वेदवती कहती है दफा हो जाओ यहां से। फिर वो जोर जबरदस्ती करता है। अब वो वेदवती से क्या कहता है, वेदवती से कहता है कि तुम इतनी सुंदर हो, तुम ये क्या विष्णु विष्णु के ध्यान में लगे हुई हो, टाइम वेस्ट क्या कर रही हो तुम, मेरे साथ चलो सोने की लंका में ऐशो आराम करेंगे। तो देखो जो भौतिकतावादी लोग हैं उनकी भी प्रवृत्ति इसी प्रकार से होती है। जब वो देखते हैं हरे कृष्णा के भक्त संडे की सुबह पढ़े लिखे अच्छी स्टेटस वाले, ठीक ठाक दिखने वाले यहां पर बैठे, क्या टाइम वेस्ट करते हो तुम लोग हर संडे यहां पे, आए दिन तुम लोग आकर यहां पर घंटों घंटों बैठे रहते हो माला झोली लेकर और एक धोती वोती पहनकर। तो रावण का भी यही आउटलुक था कि क्यों तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। कितनी बार सुना है लोग बोलते ना, तो जब भी कोई ऐसा कहे कि तुम क्यों ये हरे कृष्णा में टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो रामायण सुना देना उनको। तो वेदवती का अपराध किया, उसके पश्चात ठीक है एक उससे अपराध हुआ, उसके बाद रंभा। अब ये रंभा कौन थी, ये कुबेर की बहू थी, मणिग्रीव की पत्नी, सुना है ना नलकोर मणिग्रीव, तो मणिग्रीव की पत्नी रंभा। तो रंभा भी इसे अच्छी लगी, वेदवती से कुछ दाल गली नहीं, तो चलो अब रंभा ठीक लग रही है। और ऐसा नहीं, वहां पर बंदोदरी बिचारी बैठी है और ये घूमता फिरता, कभी यहां मुंह मारता कहीं वहां मुंह मारता, ये ऐसा रावण। तो अभी रंभा सीधा जबरदस्ती करने, तो रंभा ने शाप दे दिया रावण को कि तूने अगर किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती की तो वहीं तेरा खात्मा। तो ये श्राप उसको मिल गया, तो अब वो थोड़ा चौकन्ना था। फिर और आगे ऐसे विचरण करते हुए सूर्य वंश का जो पहला राजा उसको तो जान से खत्म कर दिया ऐसे ही खेल खेल में, कोई वो राजा ने कुछ बिगाड़ा नहीं था इसका, परंतु उसे लगा कि बहुत समय हो गया, हाथ खुजली हो रही थी किसी को मारने की उसको, तो सूर्यवंश के पहले राजा को ऐसे ही खत्म कर दिया रावण ने। ये देखो ये उसका रिज्यूमे है बाय द वे, यमराज। एक बार उसने सोचा कि यमराज से सब डरे हुए रहते हैं क्योंकि यमराज मृत्यु के देवता हैं, तो क्यों ना मैं यमराज को ही खत्म कर दूं, न रहेंगे यमराज न मुझे मृत्यु प्राप्त हो। तो यमराज ऑलमोस्ट रावण को डिफीट करने वाले थे लेकिन नहीं कर पाए, इतनी शक्ति रावण के अंदर थी। तो क्योंकि रावण ने ये चार व्यक्तियों का अपराध किया था, तो इन चार अपराधों के वजह से ये चार चीजें, ये चार द्वार खुल गए रावण के पतन के। तो ये जो चार द्वार हैं, जो चार नियम श्रील प्रभुपाद ने दिए हैं, इंटॉक्सिकेशन, इलसेट सेक्स, मीट ईटिंग और गैम्बलिंग, ये चार द्वार हैं। रावण ने एक एक कर चारों द्वार खोल दिए उसके पतन के। तो ये चार व्यक्तियों के अपराध से संबंधित ये चार जो पाप हैं, पाप कृत्य, वो रावण को मतलब इसी दौरान राम विचरण कर रहे हैं और राम ऋषि मुनियों का आशीर्वाद अर्जित कर रहे थे, तो इस दौरान राम आशीर्वाद अर्जित कर रहे हैं और रावण ये सब कर रहा है। तो राम का रिज्यूमे क्या है कि भरद्वाज मुनि, ये मुनि, उन सब से आशीर्वाद अर्जित कर 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 राम आगे बढ़ रहे हैं अपने वनवास में और रावण ये कर रहा है। अच्छा, इतना ही नहीं कि रावण ने तो ये सब कुछ किया, रावण जिस परिवार से था या रावण की स्वयं की बहन जिसको हम नासिक में भली भांति जानते हैं, सूर्पणखा। अभी देखिए हम लोग सूर्पणखा पर हंसते हैं, परंतु वाल्मीकि मुनि ने एक बहुत ही गहरा मुद्दा दिया है, सूर्पणखा के उदाहरण से एक ऐसी शिक्षा हमें दी है जो जानने लायक है। जब प्रभु श्री राम यहां पंचवटी में लक्ष्मण और सीता के साथ निवास कर रहे थे, तो उस समय सूर्पणखा अपनी सहेलियों के साथ, और सूर्पणखा की सहेली कौन, सब बाकी राक्षसियां, तो उनके साथ सूर्पणखा विचरण कर रही थी। तो जैसे ही सूर्पणखा ने रामचंद्र जी को देखा, हाँ वाल्मीकि जी कहते हैं कि रामचंद्र जी को देखने से पहले सूर्पणखा यहां पर जिस जगह पंचवटी में प्रभु श्री राम निवास कर रहे थे, तो अलग अलग ऑब्जर्वेशंस सूर्पणखा के हुए, तो बहुत सुंदर उसके ऑब्जर्वेशंस। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन सूर्पणखा का ये रहा कि उसने देखा कि यहां पर इस पूरे जंगल में ये एक ऐसी जगह है जहां पर शुभ चिन्ह दिख रहे हैं सब जगह पर। जो हवा बह रही थी वो हवा इतनी शीतल सूर्पणखा को महसूस हो रही थी कि वो उस हवा से आकर्षित हुई, और वो हवा क्या थी, रामचंद्र जी को स्पर्श करते हुए आ रही थी। तो अभी तक सूर्पणखा ने देखा नहीं है रामचंद्र जी को। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, महक, जो सुगंध आ रही थी रामचंद्र जी के शरीर से, उस सुगंध से सूर्पणखा आकर्षित हुई, अपने सहेलियों को पूछती है कि ये अचानक, हम तो इतने वर्षों से यहां पर रह रहे हैं, कभी हमने ऐसे दिव्य अनुभव नहीं किए, यहां पर दिव्य अनुभव हो रहे थे, डिवाइन साइंस इन द फॉरेस्ट। फिर जब वो रामचंद्र जी को देखती हैं, तो देखते ही शूर्पणखा की नजर टिक जाती है रामचंद्र जी के एक एक अंग के ऊपर। इसलिए वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि रामचंद्र जी जब भी अपने इतने सुंदर स्वरूप को लेकर घूमते, किसी भी वन से गुजरते, तो जब ऋषि मुनि या पशु पक्षी या कोई भी जीव जब रामचंद्र जी के भुजाओं को, उनके कंधों को देखता, तो उनकी आंखें वहीं टिक जाती, उनकी आंखें वहीं टिक जाती। परंतु उनकी आंखें कहती कि और भी अंग और भी सुंदर हैं, परंतु वो आंखें वहां से हट नहीं पाती थी, और बहुत समय लगता उन आंखों को रामचंद्र जी के कंधों से कहीं और हटने में। तो यदि कुछ समय पश्चात जब उनको प्रयास कर लोग अपनी आंखों को हटाते कि अरे और भी सुंदर अंग हैं इनके, उनको भी देखो, तो जब वो उनके बड़े आजानुलंबे, उनके बड़े बड़े हाथों को जब देखते, तो आंखें वहीं पर फिर टिक जाती, वापस अटक जाती। और फिर बुद्धि कहती कि अरे और भी हैं, ये चल रहे हैं, गुजर जाएंगे तुम्हारे आगे से, तो इसलिए जल्दी से और भी इनके अंग को देख लो। और ऐसे जब उनके मुखमंडल को ये लोग देख लेते, तो वहां से अपने आंखों को निकाल पाना एक प्रकार से असंभव हो जाता है। और वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि जब कोई भी जीव वन में रामचंद्र जी के चरणों को देख लेता, तो कहता है कि मेरा जीवन बस अब इनके चरणों में ही मुझे बिताना है। उसे समझ में नहीं आता कि ये विचार क्यों आ रहे हैं उसके अंदर, वो प्रयास नहीं करना पड़ता उनको इस विचार को लाने के लिए। स्वाभाविक रूप से उनके चरणों को देखकर उनके अंदर ये विचार आता कि ये जो व्यक्ति हैं, इन व्यक्ति के चरणों में मेरा जीवन समर्पित होना चाहिए। तो शूर्पणखा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही उसने रामचंद्र जी के सुंदर अंगों को देखा, तो शूर्पणखा टकटकी लगाए, कहते ना टकटकी लगाए, अब इतना ही काफी नहीं था, वो दूर से झाड़ियों से देख रही है भगवान को अपनी सहेलियों के साथ, टकटकी लगाए, और वो देख रही है तीन व्यक्ति, राम लक्ष्मण और सीता, तीनों को देख रही, अभी तक जानती नहीं कौन है ये। रामचंद्र जी के ऊपर उसकी आंखें टिकी हुई है, और उस समय प्रभु श्री राम लक्ष्मण और सीता से वार्तालाप करते हैं। तो अब तक तो केवल देखा, तो वाल्मीकि मुनि इस प्रकार का डिस्क्रिप्शन देते हैं कि आप किसी व्यक्ति, ऐश्वर्यशाली व्यक्ति के बंगले को दूर से देखो तो आकर्षित हो जाओगे, अरे जाकर देखना चाहिए इसका मालिक कौन है, है ना, बंगले को। तो वैसे ही जो फॉरेस्ट के अंदर डिवाइन साइंस शूर्पणखा ने देखे, तो मानो कि बंगले में प्रवेश किया, बंगले में प्रवेश करने के बाद उस मालिक को देख लिया, हे दिखने में इतना सुंदर बंगला, इतना सुंदर ये भी, इतना सुंदर। कई बार बंगला सुंदर होगा किसी का, लेकिन मालिक समझ में नहीं आता, वो झाड़ में पानी दे रहा होगा बाहर, या नौकर ज्यादा अच्छा दिख रहा होगा मालिक से। परंतु यहां पर बंगला भी सुंदर, मालिक अति सुंदर उससे। परंतु जब मालिक बोलना शुरू करता है, तो कई बार असलियत पता लगती है कि अरे ये तो बोलने में तो कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं है इसमें। परंतु प्रभु श्री राम की वाणी जब सुनी शूर्पणखा ने, तो अब एक एक कर उसका हृदय जो है वो जो कहते कैप्टिवेट, शी वॉज गेटिंग कैप्टिवेटेड बाय लॉर्ड राम। हम लोग क्या चाह रहे हैं, यही चाह रहे हैं ना। अगर सुरप्रगा का निकाल दें नाम तो लगेगा कि किसी शुद्ध भक्त का डिस्क्रिप्शन चल रहा है। हाउ कंडीशन लिविंग एंटिटी बिकम्स अ प्योर डिवोटी गेटिंग अट्रैक्टेड टू लॉर्ड राम। सीक्वेंस कितना सुंदर बताया गया है अट्रैक्शन का, कैप्टिवेशन का। इसके पश्चात केवल इतना ही नहीं, क्योंकि रामचंद्र जी जो कुछ करते उनका एक अंदाज होता, ग्रेस। ही वुड डू एवरीथिंग विथ ग्रेस। तो सूर्पणखा ने देखा इम्पेकेबल बिहेवियर, कि ये व्यक्ति यदि चलता भी है, ये व्यक्ति यदि अपना धनुष भी उठाता है, ये व्यक्ति यदि मुड़कर देखता भी है, ये व्यक्ति जो कुछ करता है उसके अंदर एक अलग ग्रेस है। सो शी वॉज नॉट ओनली अट्रैक्टेड बाय द डिवाइन साइंस ऑफ द फॉरेस्ट, ब्यूटी ऑफ राम, स्पीच ऑफ राम, बट द इम्पेकेबल ग्रेसफुल बिहेवियर ऑफ राम। और उस समय सूर्पणखा से रहा नहीं गया और उसने अपनी सहेलियों से पूछा कि बताओ मुझे अभी तुरंत ये व्यक्ति है कौन, कौन है ये। तो जो फाइनल ब्रह्मास्त्र सूर्पणखा पे चला वो क्या था, जब इन सब सहेलियों ने मिलकर कहा अरे ये तो दशरथ नंदन राम है, तो उसने जब ये नाम सुना राम, उसे वो नाम इतना अच्छा लगा, इंग्लिश में कहेंगे शी फेल इन लव विद द नेम फर्स्ट। सूर्पणखा फेल इन लव विद द डिविनिटी स्प्रेड बाय राम, ब्यूटी ऑफ राम, स्पीच ऑफ राम, बिहेवियर ऑफ राम, एंड फाइनली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो सूर्पणखा क्या करने लगी, वो अपने सहेलियों से जैसे ही उन्होंने तो एक बार कह दिया दशरथ नंदन राम है ये, तो जैसे ही उसने ये नाम सुना राम तो वो अब उच्चारण करने लगी, ये राम है जो इतने सुंदर हैं, ये राम है जिनकी वाणी इतनी मधुर है, ये राम है जिनकी सुंदरता अपरंपार है, इतनी अति सुंदर ये राम, राम राम राम। उसके मुंह से इतनी बार राम का नाम आने लगा कि वो जो इतनी बदसूरत दिखने वाली सूर्पणखा, सहेलियों ने देखा, सूर्पणखा ने प्रयास नहीं किया अपने भेष को बदलने का, वो राम का नाम जप करते 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 अपने आप सुंदर हो गई। और बाकी जो उसकी इर्द गिर्द जो सहेलियां हैं, उन सहेलियों ने जब इसको देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गई कि ये जो इतनी बदसूरत दिखने वाली राक्षसी ये इतनी सुंदर कैसे हो गई। सो सूर्पणखा बिकेम ब्यूटिफुल जस्ट बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब असली लेसन हमारे लिए शुरू होता है। हमारे लिए लेसन क्या शुरू होता है कि हम सब सूर्पणखा की तरह बदसूरत दिखने वाले थे इस कौन में आने से पहले। हाँ, कोई नजर घुमाकर भी नहीं देखता था हमारी ओर, और जब हम सूर्पणखा की तरह इस्कॉन के मंदिर में प्रवेश किए तो दूर से हमको डिवाइन साइंस पहले दिखे, फिर हम हमारे मित्रों के साथ, हमारी भी पलटून के साथ हम आए, क्या है ये यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर हमने देखा राधा मदन गोपाल जी की सुंदरता, हाँ तो नजर टकटकी, याद है ना वर्ड, टकटकी लगाए हुए, ये कौन है इतने सुंदर, तो उनकी सुंदरता से मोहित। फिर बाद में जब प्रवचन सुने हमने, हाँ ऐसे ऐसे भक्तों के, श्रील प्रभुपाद उनके प्रतिनिधियों के प्रवचन सुने, बाप रे ऐसे प्रभु की वाणी यहां पर दोहराई जाती है, हर्ड द स्पीच। फिर उसके बाद में भक्तों का बिहेवियर, हाँ हम जानते हैं क्यों हंस रहे हैं आप लोग, तो भक्तों का बिहेवियर उसको देखकर, और फाइनली जब भक्तों ने प्रभु का नाम लेना शुरू किया और हमको नाम दिया, तब फिर हुआ क्या कि हम जो सूर्पणखा की तरह एकदम बदसूरत कुरूप घूम रहे थे संसार में, हम भी सुंदर होने लगे, और यहां तक कि फिर दीक्षा में हमको नाम भी मिल गया, श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदरी देवी दासी, परम सुंदरी देवी दासी, ऐसे नाम मिल गए हमको। हम भी फिर एकदम क्या हुए, सुंदर हो गए। और फिर दूसरे जो हमारे आसपास हमारे मित्र हमको छोड़ने आए थे, जिन्होंने हमको इंट्रोड्यूस कराया, सहेलियों ने सूर्पणखा को इंट्रोड्यूस कराया ना आराम से, तो जो हमको इंट्रोड्यूस कराए वो लोग फिर देखते, ये तो भाई इतना सुंदर हो गया, ये तो इसके चेहरे में एक अलग ही ग्लो दिखता है, बिना चार्जिंग के ये तो एकदम 500 वॉट बल्ब की तरह चमकता रहता है, हैलोजन बन गया। तो उनको हमारे अंदर ये बदलाव दिखता है। तो ये सूर्पणखा की कहानी हमारी सबकी कहानी है। हम लोग नासिक में जो हैं, हम लोग सब अपने अपने रूप से सूर्पणखा की तरह अपने अंदर परिवर्तन। तो सूर्पणखा तब तक ठीक थी, कब तक ठीक थी, जब तक उसने सीता मैया का अपराध नहीं किया था। जब उसने ये देखा कि ये सुंदर दिखने वाले जिसने मुझे सुंदर बनाया, ये किसी और का है, ये किसी और के हैं, तब किया क्या सूर्पणखा ने, सूर्पणखा ने सीता के ऊपर प्रहार किया। तो वैसे ही जब हम भक्तों के संग में आकर जब हम सुंदर बन जाते हैं, किसकी कृपा से, भगवान की सुंदरता की वजह से, भगवान के नाम के वजह से, उनके भक्तों के वजह से, और जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों का अपराध करते हैं तो हमारे भी नाक कान कटती है। कौन काटते हैं, लक्ष्मण जो गुरु हैं। लक्ष्मण कौन है, आदि गुरु। और आदि गुरु का काम क्या है कि जो भी भगवान के शुद्ध भक्तों का अपराध करे, खोखरी लेकर उसके नाक कान काटो। तो यदि मतलब सोचो कि वो सूर्पणखा किसी व्यक्ति की सुंदरता, यदि उसको बदसूरत बनाना है तो सोचो बिना नाक के वो व्यक्ति कैसा लगेगा। मुहारा भी है ना, नाक कटा दी। तो यदि भक्तों के समाज में कोई भक्त अपनी नाक कब कटाता है, जब वो किसी शुद्ध भक्त का अपराध करता है। तो ये है सूर्पणखा की शिक्षा हम लोगों के लिए। हम लोग बचपन में एक भजन गाया करते थे, कि हमें हमारे जीवन में किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। सुरपण का वही प्रभु श्री राम की भक्ति कर वो भगवत धाम जा सकती थी, सारा अवसर सारी सुविधाएं उसके पास थी, इतनी प्रशंसा वो कर रही थी, परंतु उसने अपने आचरणों के वजह से अपने नाक कान कटा दिए। आचरण सुंदर रहे कर्तव्य से विचलित न हो, तो ये पहली लाइन में गाया गया है, हमारे आचरण सुंदर होने चाहिए। आचरण सुंदर रहे कर्तव्य से विचलित न हो, हम स्वयं अपने ही कर्मों से कभी शापित न हो, हम स्वयं अपने ही कर्मों से कभी शापित न हो। सुरफड़का अपने ही कर्मों के वजह से उसने अपने आप के ऊपर एक शापित जीवन अपना लिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सुरभणका और रावण, तो सुरभणका ने किया क्या, कटी नाक और कान को लेकर रावण के पास जाती है और रावण के कान भरती है। तो जो सुरभणका जैसे भक्त होते हैं, जो भक्त समुदाय में आकर केवल वैष्णव निंदा करते हैं, जैसे सीता की निंदा की, तो वो लोग करते क्या हैं, वो केवल स्वयं का नाक कान नहीं कटाते, रावण को अभी पतन कराया सुरभणका ने, वो दूसरों के कान भरकर। तो रावण का पतन उसका प्रारंभ कहां से हुआ, रावण ने बहुत ही ध्यान से सुना। क्या सुना, जो सुरपणका के हृदय के अंदर का द्वेष था सीता के प्रति, उसको सुना। तो जब हम ध्यान से किसी वैष्णव की निंदा सुनते हैं, तो हमारे अंदर का रावण जो शांति से अगर बैठा भी हो, उसको उकसा डालता है। तो सुरफड़का ने किया क्या, सुरफड़का वांटेड टू एंजॉय दी शक्तिमान, रावण वांटेड टू एंजॉय शक्ति। इसलिए श्री वैष्णव टीकाकार कहते हैं कि सुरफड़का और रावण अगर मिलकर एक कार्य करते, ओनली इफ दे वुड हैव डन वन थिंग, यहां तक कि आचार्य कहते हैं कि रावण जब सीता का अपहरण कर रहा था, यदि रावण राम को भी साथ में अपहरण कर ले जाता, इफ रावण वुड हैव किडनैप्ड राम अलोंग विथ सीता, Would have become beautiful. वो अपने जीवन को सिद्ध कर लेता। यदि सुरफड़का राम के साथ सीता का भी गुणगान करती, तो सुरफड़का की सुंदरता बनी रहती, हमेशा हमेशा के लिए उसकी वो सुंदरता बनी रहती, हमेशा हमेशा के लिए उसकी जो कुरूपता है, उसकी जो बदसूरती है, वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाती। परंतु क्योंकि दोनों ने ये नहीं किया, दोनों भाई बहनों ने ये नहीं किया, इसलिए दोनों का पतन हुआ। और इसके अगेंस्ट हनुमान जी, जिनके लिए एक पूरा खंड है सुंदर कांड, उनको सुंदर इसलिए बताया गया है क्योंकि हनुमान जी ठीक विपरीत किए जो सुरफड़का और रावण कर रहा था, कि वो अलग करना चाहते थे सीताराम को। हनुमान जी ने क्या किया, उन दोनों को जोड़ दिया। तो इसलिए यदि हम हमारे जीवन में हनुमान जी का आदर्श रखकर हमारी जो खोई हुई सीता है, हमारी भक्ति को प्रभु श्री राम से मिलाएंगे, तो वास्तविक रूप में हमारी भी जो सुंदरता है वो बढ़ती रहेगी। इसलिए हमें कम से कम इतना तो करना है कि हम लोग सुर्पणखा की तरह पहले थे, बदसूरत अनर्थ से भरे हुए, भक्ति में आने के बाद श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम लोग थोड़े सुंदर बने हैं, तो हम फिर से बदसूरत न बने। इसलिए आचरण सुंदर रहे, कर्तव्य से विचलित न हो, हम स्वयं अपने ही कर्मों से कभी शापित न हो। बस केवल इतना हम ध्यान रखें। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, इफ यू रियली वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इन दिस युग धर्म, जस्ट डू टू थिंग्स, चैंट हरे कृष्णा एंड डोंट क्रिटिसाइज डिवोटीज। चैंट हरे कृष्णा एंड डोंट क्रिटिसाइज डिवोटीज। इफ यू कैन ओनली फॉलो, और ये कौन कह रहे हैं, हाथ जोड़कर युगावतार बोल रहे हैं, हमें युगावतार बोल रहे हैं। इसलिए युग धर्म केवल चैंटिंग हरे कृष्णा नहीं है, युग अवतार के अनुसार युग धर्म क्या है, टू नॉट क्रिटिसाइज वैष्णवाज एंड वाइल इन दैट कॉन्शियसनेस चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। किसी का कोई प्रश्न?
हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास दिया आपने। प्रभु जी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि आपने जैसे कहा कि कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख, कि जो साधक भक्ति में लगता है तो विषय सुख मांगता है लेकिन भगवान उसको देते नहीं है। लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं कि कृष्ण भावना में शुरुआत के दिनों में बहुत सारे भक्त जो है वो उन्होंने अच्छी तरह सेवा की, कोई भौतिक इच्छा न रखते हुए उन्होंने पूरी तरह समर्पित किया, साधना किया, लेकिन समय के अंतराल पर वो इतने दूर चले गए हैं कि बहुत बड़ा लॉस इस्कॉन या एक कम्युनिटी का, समाज का होता है। तो इसको हम लोग कृष्ण भावना में एक साधक इसको कैसे समझे कि भगवान की इस स्थिति को, या फिर कैसे इसको हम लोग समझे, क्योंकि एक तो कहा है भगवान ने कि हम लोग उसको नहीं देते, और एक तरह कि आज वो जो प्रचार कर रहा था इतना रिस्पॉन्सिबल था, वो चार नियम पालन नहीं कर रहा है, 16 माला जप नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग कैसे समझे इस दोनों कॉन्ट्रोवर्सी को।
देखिए, श्रील प्रभुपाद और हमारे आचार्य बताए हैं कि जब भी कोई भक्त भक्ति के मार्ग से भ्रमित हो जाता है या विपथ हो जाता है तो दो कारण है, एक है वैष्णव अपराध और दूसरा कारण हृदय दौर्बल्यम, कमजोरी की वजह से। अब इसमें जब कोई वैष्णव अपराध करता है तो वहां भगवान उसको तब तक कृपा नहीं देते जब तक कि उस वैष्णव की कृपा या वैष्णवों की कृपा उसे पुनः प्राप्त नहीं होती। और इतने सारे उदाहरण हैं, जगाई मदाई का उदाहरण है, गोपाल चपल का उदाहरण है, जिन्होंने डायरेक्टली वैष्णव अपराध किया। चैतन्य महाप्रभु जो परम कृपालु अवतार, वो अपनी कृपा नहीं दिए जब तक कि जिनका उन्होंने अपराध किया था वो वैष्णव या अन्य वैष्णवों ने चैतन्य महाप्रभु को आग्रह कर कृपा देने के लिए नहीं कहा। तो ये एक पहला कारण, यदि हम देखते हैं कि कोई अभी प्रामाणिक है, और सुर्पणखा का वही उदाहरण है, तब तक वो प्रामाणिक थी जब तक कि सीता का अपराध नहीं किया उसने। और रामचंद्र जी ने वहां तक सहन किया जब उसने कहा कि मैं आपके साथ संग करना चाहती हूं। रामचंद्र जी तब तक पोलाइट थे, ठीक है, तुम्हारे अंदर ये इच्छा होगी कि तुम मुझे मेरा वरण करना चाहती हो, परंतु मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। वहां तक राम लक्ष्मण सहन किए, लेकिन जब उसने सीता के ऊपर प्रहार करना शुरू किया तब उनसे सहन नहीं हुआ। तो जब हम प्रामाणिकता से, प्रभु जी का प्रश्न है कि कोई वैष्णव प्रामाणिकता से सब कुछ कर रहा है, क्यों ऐसा दिखता है कि वो अब सोलह माला नहीं कर सकता, वो चार नियम पालन नहीं कर सकता? क्योंकि वो सोलह माला करने के अंदर जो टेस्ट है, अपराध करने की वजह से भगवान वो टेस्ट ले लेते हैं, और जो चार नियम पालन करने की शक्ति है वो शक्ति ले लेते हैं। टू थिंग्स कृष्णा टेक्स अवे व्हेन वन ऑफेंड्स डिवोटीज, टेस्ट टू चैंट हरे कृष्णा एंड अवर स्ट्रेंथ टू फॉलो द प्रिंसिपल्स। परंतु ये परमानेंट नहीं होता, क्योंकि ये सारे उदाहरण जगाई मधाई गोपाल चपल, इन सब का उदाहरण क्या था? आगे चलकर गोपाल चपल देवकी नंदन दास जगाई मधाई भगवान के पार्षद बने, पंचतत्व के साथ वो कीर्तन में नृत्य करते थे। तो हां, भगवान ने कहा है आमी विज्ञेयी मूर्ख, कि अगर वो मूर्ख होगा, मूर्खता के वजह से वो मुझे छोड़कर, वैष्णव को छोड़कर गलत चीजों में लगा हुआ है, इंद्रिय भोग में लगा हुआ है, भौतिक कार्यों में लगा हुआ है, परंतु मैं विज्ञ हूं, स्वचरणामृत दिया, तो भगवान का जो चरणामृत है भगवान अवश्य देते हैं, परंतु वो अपने टाइमिंग के अनुसार देते हैं। हमको अक्सर क्या होता है, हमको ये प्रश्न होता है कि ये भक्त 10 साल से हमारे वैष्णव कम्युनिटी से दूर है, तो 10 साल हमारे लिए बहुत बड़े होंगे, परंतु कई बार 10 जन्म भी बीत जाए उसके बाद भी भगवान उसको अपनी लिस्ट से क्रॉस नहीं करते हैं। लिस्ट में वो होता है, धीरे 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 उसको एहसास हो जाए या वैष्णव की कृपा उसको मिलती जाए। कई बार हो सकता है कि 10 जन्म बाद वो वापस उतना सीरियस बन जाए जितना सीरियस वो था, या उससे ज्यादा सीरियस बन जाए। जैसे अजामिल, लास्ट में 88 इयर्स का अजामिल हुआ तब जाकर उसको एहसास हुआ। अजामिल ये दूसरी कैटेगरी है, हृदय दौर्बल्य कमजोरी की वजह से, उसने किसी का अपराध नहीं किया था वैष्णव का। तो भगवान का जो प्रण है वो अपौरुषीय है, उसमें से भगवान, उस पर हम डाउट नहीं कर सकते। हाँ, हमको डाउट्स कब आते हैं, जब हमारे टाइमिंग के अनुसार हम देखते हैं कि वो वापस नहीं आ रहा। हमारा कर्तव्य है कि हम ऑन बिहाफ ऑफ भगवान उनको वापस भक्तों के संग में लाएं, उनको प्रेरणा दें। लेकिन पहले ये देख लें कि हम टिके रहें, नहीं तो पता चला कि वो डूब रहा है, उसको हाथ दिया बचाने के लिए, तो यहां पे बाकी भक्त देख रहे हैं कि वो भी गया, ये भी गया, ये भी नहीं दिख रहा है अभी। तो इसलिए जो एक बार प्रामाणिकता से भगवान की भक्ति कर लिया है, भगवान ने कह दिया है गीता में, नेहा भिक्रम नाशोस्ति, कभी उसका नाश हो नहीं सकता। हाँ, खाली टाइमिंग्स जो हैं वो भगवान परफेक्ट टाइमिंग के अनुसार उसको वापस लाते हैं। इसलिए उत्साह, निश्चय और धैर्य, इसकी आवश्यकता है।
थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, दूसरा प्रश्न ये है मेरा कि जैसे आपने कहा कि शूर्पणखा का पूरा परिचय दिया कि शूर्पणखा पहले किस प्रकार से नासिक में आती है, वैसे हम लोग मंदिर इस्कॉन में आ जाते हैं, पहले अंदर कुछ क्वालिटीज नहीं रहती लेकिन कृष्ण भावना में आने के बाद कुछ गुण आ जाते हैं, तो हम लोग कृष्ण भावना में आने के बाद एक दीक्षा हुआ या सैफरॉन मिल गया या काउंसलर बन गए, लेड प्रीचर बन गए, तो इस स्तर पर हम बाकियों को जज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम क्या है वो हमारी साधना में समझ में आता है. लेकिन ईगो इतना प्रभावशाली होता है कि उसको जज करना, वो मेंटेलिटी कंटिन्यू रहती है, तो इसके कारण भी वैष्णव अपराध हो सकता है. तो इस स्थिति को हम कैसे ये करें कि अहंकार भी नीचे नहीं झुकने देता, जज करने की मेंटेलिटी हमारे अंदर रहती है, और साथ साथ अंदर से तो ये मालूम है कि साधना में क्या चल रहा है करके, लेकिन झुकना नहीं जमता, तो ईगो के कारण. तो इस किस इसको किस प्रकार से हैंडल करें प्रभु जी?
एक बार दिल्ली मंदिर में राधानाथ महाराज भागवतम क्लास में जगाए मधई का पास टाइम सुना है, तो लोकनाथ महाराज ऑडियंस में थे, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा. महाराज ने एक पॉइंट कहा था अपने लेक्चर में कि अक्सर जब हम एज अ प्रीचर अहंकारी बन जाते हैं तो भगवान बहुत से जगाए मधई को अरेंज करते हैं मटका लेकर. तो लोकनाथ महाराज ने क्वेश्चन पूछा कि क्या महाराज वैष्णव कम्युनिटी में भी वैष्णव को भगवान मटके देते हैं? तो महाराज ने कहा हाँ, यस, समटाइम्स टू क्रश अवर ईगो कृष्णा विल हैंड ओवर दैट पॉट टू समदर वैष्णव टू हिट ऑन आवर हेड. एंड देन महाराज ही सेड सो वी शुड रेगुलरली प्रे टू द डीटीज इफ वी नो दैट आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम ऑफ फॉल्स ईगो एंड बींग जजमेंटल. Then we should regularly pray to the deities that please send someone to crush my false ego. And then Maharaj said, even if you don't find anyone coming, just meditate on the lotus feet of Krishna, because the lotus feet of Krishna has thunderbolt as a symbol. So that thunderbolt is meant to destroy. जैसे जो बिजली होती है, बिजली वज्रपात जो होता है वो बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर कर सकता है. तो जो भगवान के चरण कमलों के ऊपर वज्र का चिन्ह है उसका ये कार्य है. जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है उसका, उस थंडरबोल्ट का? टू क्रश अवर फॉल्स ईगो. जो पर्वतों के समान, ऐसा नहीं हिमालय से भी बहुत बड़ा है, एक नहीं बहुत से पर्वत हैं. तो महाराज उस लेक्चर में, मुझे अभी भी याद है, महाराज कहे दैट वी शुड कीप प्रेइंग इफ वी आर फेसिंग दैट प्रॉब्लम, वी शुड कीप प्रेइंग टू कृष्णा, सेंड सम जगाई मधाई आउटसाइड इनसाइड वेर एवर टू क्रश माई ईगो एंड ब्रिंग मी बैक टू ट्रैक. And if you sincerely pray, Krishna will listen. And Krishna will send. But then when Krishna sends, don't complain. Huh? Don't complain because you prayed and Krishna has sent someone to crush your ego. So, sincerity should be, जैसे जानकीनाथ प्रभु कह रहे हैं कि सबसे पहले sincerity किस में दिखती है, कि जो हमारी बीमारी है ये judgmental होने की या अहंकार की, इस बीमारी को स्वीकार करना कि हूं मैं बीमार हूं. कई बार हमारा अहंकार इतना होता है कि नहीं बीमार नहीं हूं, मैं कभी बीमार पड़ता ही नहीं, मेरे रिपोर्ट देखो, हो ही नहीं सकता. तो हमको यदि इलाज हमारे ऊपर करवाना है तो सबसे पहले डॉक्टर को स्वीकृति क्या देनी है कि हाँ डॉक्टर साहब मैं बीमार हूं, इलाज कीजिए। तो ये शुरुआत है बीमारी पहचानना। और फिर जब डॉक्टर वो इंजेक्शन लेके आता है और वो जब सुई चुभोता है, तब फिर हमको डॉक्टर को शिकायत नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर मैं तो इलाज करने बोला था, ये सुई क्यों चुभो रहे हो? तो डॉक्टर क्या कहेगा? डॉक्टर यही कहेगा कि तुम आए थे मेरे पास, मैं नहीं आया था तुम्हारे पास। ठीक है, मुझे मत सिखाओ कि इलाज कैसे करना है। हाँ, इसलिए हम जब भगवान के पास जाके कहते हैं कि भगवान न धनम न जन्म न सुंदरी, और भगवान अश्लीष्य वा पादरता, मुझे कुचलो, रोज गाते हैं ना भगवान के सामने हाथ जोड़ के, भगवान मुझे चाहे आप कुचलो, चाहे आप मुझे आलिंगन करो, चाहे ये करो वो करो, और फिर जब भगवान इंजेक्शन लेके सब करते हैं, कुचलना शुरू करते, भगवान थोड़ा धीरे करो ना। तो भगवान कहते हैं श्लोक में वो वर्ड तो नहीं था। तो इसलिए हमें प्रार्थना प्रामाणिकता से करनी चाहिए, और जब भगवान उसका आदान प्रदान करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, तो सिंसियरली उसको स्वीकार करना है, और तब जाकर ये सारी जो बीमारियां हैं वो दूर होंगी और हम स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। यस मित्र कृष्ण प्रभु।
रावणा डिफीटिंग यमराज इज रिलेटेड टू गैम्बलिंग, हाउ इज इट, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन? बिकॉज एक्चुअली यमराज इज अबाउट टू डिफीट रावणा, एक्चुअली ब्रह्मा हैज कम इन बिटवीन, आई हैव गिवन हिम सम बोन्स, सो डोंट डू लाइक दैट, देन ही स्टॉप्ड, देन रावणा वॉज सेव्ड एक्चुअली।
See, it is explained that it's a very subtle point. It is explained that Ravan, in all these four people, Ravan was like, you know, he was not doing it pre-planned. He was doing it impulsively. So when it came to Yamaraj, he just like, you know, a gambler, impulsive gambler. He takes chances. So Ravan had that thing in his mind that although Yamaraj is the superintendent of death and it is impossible to win over death, but still, let me try. So that is the mentality of a gambler. Taking risk. Stupid risk. Gambler means compulsive or impulsive gambler means one who takes stupid risk. Puts everything at stake. That was the mentality of Ravan at that time. Yes.
हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा है कि जो रावण था वो इतना बड़ा तपस्वी था, तो इतना तपश्चर्या करने के बाद उसने शिव जी को ब्रह्मा जी को भी मतलब उसने प्रसन्न कर लिया था, तो फिर भी उसके अंदर के जो अवगुण थे वो दूर क्यों नहीं हो पाए इतने तपश्चर्या करने के बाद भी?
क्योंकि उसके तपस्या करने का जो मोटिव था शुरुआत से वो ही करप्टेड था। जैसे मान लो कि आप यदि खिचड़ी बनाना चाहते हो, तो खिचड़ी बनाने के लिए अगर आपने रॉ मटेरियल ही सड़े हुए इस्तेमाल किए हैं, तो फिर ताज़ी खिचड़ी कैसे बनेगी? आपने सड़ी हुई सब्जी इस्तेमाल की है, सब कुछ सड़ा हुआ इस्तेमाल किया है, तो जो फाइनल रिजल्ट होगा क्या होगा? खिचड़ी बोलोगे उसको, लेकिन उसके आगे एक प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा, सड़ी हुई खिचड़ी, है ना?
फिर भी फिर उसको भगवान प्रसन्न कैसे हुए उसको, मतलब उसका इंटेंशन अगर ठीक नहीं था तो भगवान को, भगवान उसको प्रसन्न कैसे
नहीं,
हुए
नहीं, देखो ब्रह्मा जी और शिव जी जब रावण जैसों को वरदान देते थे ना, तो वो उनको वरदान मन को मारते हुए देना पड़ता था उनको, क्योंकि वो लोग उनकी ऐसी खूंखार तपस्या से वो लोग जबरदस्ती उनसे वरदान उगलवाते थे, तो वो कोई दिल से नहीं देते थे। इसलिए देखो रावण ने जब वरदान मांगे ब्रह्मा जी से, तो उसने ऐसे वरदान मांगे कि मुझे, मैं इसे नहीं मरना चाहिए, उसे नहीं मरना चाहिए, तथास्तु तथास्तु, ब्रह्मा जी सब तथास्तु कर रहे थे। फिर फाइनली जब मनुष्य कि मैं मनुष्यों के हाथ नहीं मरना चाहिए, तो रावण का अहंकार इतना था, उसकी खिचड़ी इतनी सड़ी हुई थी, तो उसने कहा मनुष्यों, नहीं नहीं नहीं, ये तो तौहीन होगी, मेरी तौहीन होगी कि मैं ये वरदान मांग रहा हूँ। कि मतलब वो ऐसा हो गया कि जैसे कि कोई बहुत शक्तिशाली मनुष्य ये वरदान मांग रहा है कि मैं चींटी के द्वारा रौंदा ना जाऊं, तौहीन है ना ये भी मांगना भी, तो मनुष्यों के द्वारा। तो जैसे ही उसने ये कहा कि नहीं मनुष्यों को छोड़ दो, ब्रह्मा जी तुरंत अब दिल से कहे तथास्तु, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान एक मनुष्य के रूप में आकर मारने वाले हैं इसको, तो वो दिल से नहीं देते थे, ये सब देना पड़ता था।
और एक सवाल है प्रभु जी, जैसे अभी जानकीनाथ प्रभु जी ने पूछा कि जजमेंटल नहीं होना चाहिए भक्ति में अगर आना है, पर जब तक हम लोग मतलब किसी भी मार्ग पे चलने की कोशिश करते या स्टार्ट करते हैं, तो इनडायरेक्टली इंसान का मन उसके अंदर एनालिसिस तो करता ही कि सही क्या है, गलत क्या है, और किसके हिसाब से मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। तो फिर अगर उस चीज में अगर पुष्टि करनी कि भाई समझो किसी भी मतलब कृष्ण भावना में हम लोग हैं, तो अगर हमें उसकी पुष्टि करनी कि हाँ भाई कृष्ण भावना ही सबसे पवित्र और ऊपर की भावना है, तो उसके लिए तो इंसान तो एक स्टेप बाय स्टेप तो वो जज करते हुए ही उस वहां तक जा सकता है ना, तो डायरेक्टली तो कोई ब्लाइंडली तो कोई उसके ऊपर ये नहीं कर सकता ना।
हाँ, तो इसलिए उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा, वो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि जब हम व्यक्ति को देखकर जजमेंटल बनते हैं, प्रोसेस को देखकर नहीं, इसलिए दो टर्म्स आपने जो एनालिसिस वर्ड यूज किया है ना, तो दो टर्म है, क्रिटिकल एनालिसिस इज वेलकम्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस बट नॉट क्रिटिसिज्म। यू शुड डू क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, नॉट क्रिटिसिज्म ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो आप जो कह रहे हैं वो करना चाहिए, क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए, क्यों, ताकि मैं जानकर और अच्छी से भक्ति करूं, ब्लाइंडली ना करूं। सो देयर इज वास्ट गल्फ ऑफ डिफरेंस, जमीन आसमान का अंतर है क्रिटिकल एनालिसिस में और क्रिटिसिज्म में। जय श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, थाय गौर प्रेमानंदी,
शिक्षाष्टकम प्रभु की जय,
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।